चलिए बात खत्म, 124 पे आ गए। ये है टर्निंग पॉइंट। जैसे एक सदर को हटाया तो अब उसकी जगह कोई दूसरा भी तो लाना है ना। पहली दफा कुरआने पाक में तरतीब के एतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है, बल्कि पहला नाम आ रहा है कुरान में। अगर आप देखें ना, आदम का तो था, मूसा थे नबी, लेकिन यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाते से फर्स्ट टाइम तस्करा है। मैं इनका इंशाल्लाह आपको भरपूर तारुफ दूंगी, लेकिन हम थोड़ा सा आयतों को गो थ्रू पहले कर लें। वह इज इबतला, वह और इस जब इबतला आजमाया। लफ्ज़ इब्तला क्या है? बला से, बा लाम वाव, इन्ना बलऊ ना हम, कहाँ हमने पढ़ा था पीछे फिरौन के चक्कर में, बलाओ में रब्बिकुम अजीम। लफ्ज़ बला जो है ना, आम है, छोटी मुसीबत, छोटी आजमाइश। बट इब्तिला, इसमें ये जो ता है ना, ये बाब इफ्तियाल बन गया, फाल की बजाय फाला से। तो इब्तिला कहते हैं बड़ी आजमाइश को, इतनी बड़ी आजमाइश के जो बहुत सारी मुश्किलों में डालने के नतीजे में होती है। मुराद है कि हमने इब्राहिम की खूब बड़ी आजमाइश ली। इसी से लफ्ज उर्दू में फिर मुबतला करना है, ठीक है? किसको किया? वाइज़ी बतला इब्राहिमा, इब्राहिम। अच्छा, अब जरा आप आयत पे नजर जमाएं, मैं गलत पढ़ने लगी हूं आपको दिखाने के लिए। और जब आजमाया, अब देखिए लफ्ज इब्राहिम के बाद जो मैं बोलूंगी ना, दो तरह बोलूंगी, मुझे बताइएगा गलत है कि सही। और जब आजमाया इब्राहिम ने, या इब्राहिम को, कैसे पता चल गया? इब्राहिम आजमाया जा रहा है या इब्राहिम को आजमाया जा रहा है? आप सब ने टेक्स्ट से बिल्कुल समझ लिया, ये कैसे हो सकता है कि इब्राहिम रब को आजमाए? तो किस चीज से इब्राहिम को किस चीज का तर्जमा है? इब्राहिम लफ्ज के ऊपर की या। अगर लफ्ज इब्राहिम पे पेश होता ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फाइल बन जाते, ऑब्जेक्ट बन जाते। तो फिर क्या होता है? इब्राहिम ने आजमाया। तो यहां क्या इब्राहिम? अब आप मुझे बताएं कौन सा हाफिज़े कुरान है जिसको ये तर्जमा पता है? ये छोटी छोटी गलतियां हमारे कुरान याद करने में जो आती है ना, हराम गलती है ये। अगर मैं ये लफ्ज यूं पढ़ दूं ना किरत में या तिलावत में, फज इब्तला इब्राहिम और रब्बा हो, तो मानी पता क्या बनता है? इब्राहिम ने आजमाया अपने रब को। कोई आजमा सकता है रब को? नाउज़ुबिल्ला। तो ये इब्राहिम की जबर और रब्बुहू की बा की पेश, ये इब्राहिम को मफूल और रब लफ्ज को फाइल बना रही है। ऑपोजिट पढ़ दूंगी, वाइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बहू, तो मानी क्या हो गया? और ये गलती लगती है आगे जाके, आप लिख लें अभी से सूरह फातिर में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वहां अल्लाह हू कह देना तो अल्लाह डरता है इल्म वालों से। लेकिन अल्लाह से डरते हैं इल्म वाले। तो देखिए ये वक्त लगाने पड़ते हैं ना, तो फिर ये बारीकियां समझ आती हैं। तो यहाँ को है, अब जब आप लफ्जी तर्जमा याद करेंगी ना, तो आप इब्राहिम को में जबर का तर्जमा को बन रहा है, बस इतना समझ लें। खैर, किसने आजमाया? रब्बू, उसके रब ने। भाई रब क्यों कहा? अल्लाह हु क्यों नहीं आया? रहीम हु क्यों नहीं आया? करीम हु क्यों नहीं आया? और आप देखेंगे पीछे भी ये बात है कि अल्लाह सुबहाना ताला जब भी नेमतों का तज़किरा करते हैं या कौमों के साथ मामले की, तो लफ्ज रब लाते हैं, और सबसे ज्यादा शायद अल्लाह का यही नाम कुरान में है, क्योंकि रब तरबियत करने वाला। रब का बिल्कुल डायरेक्ट डे टू डे हमसे ताल्लुक है। बस आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला मोइज़ है, जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला रोज आपके और मेरे हक में मोइज़ी हो। हमारे साथ अल्लाह ताला के मोइज़ होने का ताल्लुक किस दिन है? जिस दिन मैं फर्स्ट आती हूँ तो मुझे इज्जत मिलती है। मैं कहूंगी मुझे इज्जत किसने दी? अल मोइज़ ने दी। अब कई दिन तक कोई इम्तिहान नहीं हुआ, कोई इज्जत नहीं मिली, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं हुई। ठीक है, चलिए अल्लाह ताला के नाम के सर राजिक होने का अपना जरा सा ताल्लुक खेले। आपको जो कुछ मिल रहा है, खाना पीना सांस वक्त जो भी है, उसमें अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, कई तरह का रिस्क होता है। रब लफ्ज ऐसा है कि कतरे कतरे खून के हर कतरे के साथ लफ्ज रब है, क्लोज एसोसिएशन। आपको याद है सुनाई थी रब्बिल आलमीन पे, कि लफ्ज अल्लाह और रब, ये दो खेल है मेरे आपके रब के साथ। बाकी 99 नहीं, उसके 200+ नेम्स हैं। किसी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी नाम के साथ आने की, फिर भी वो है। बट यहाँ रब्बुहु लफ्ज़ में अल्लाह और बंदे का, जैसे आपको बताया था ना कि रब का अपोजिट क्या है, रब का अपोजिट अब्द, शाबाश। अल्लाह का अपोजिट कोई नहीं है, वो यूनिक है। जैसे खालिक से मखलूक, राजिक से मरजूक, साजिद से मस्जूद, लेकिन रब से बंदा है। ये जब हम कहते हैं या का नाबुदू, तो बंदे का ऑपोजिट रब है। तो अगर मैं बंदी हूं ना, तो वो मेरा रब है। और जब अल्लाह कहते हैं, तो उसमें मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं बनता। लफ्ज अल्लाह में ताल्लुक नहीं है, वो एक हुक्म है। यस मैं हूं, जैसे आप कहते हैं ना बॉस या एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर। तो अल्लाह के साथ मेरा आपका जाती ताल्लुक कोई नहीं बनता, वो उसका अपना नाम है। जैसे हम बेबस हैं उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ने से। बट रब अब्द तो रब अजमाता है। कौन अजमाता है? जो आपको देता है, जो खाने को देगा उसको हक है कि आपको अजमाए। जो सांस दे, जो औलाद दे, जो माँ बाप जैसी तो मोहब्बतें दे, तो गोया कि रब ने अगर अजमाया तो उसको हक है कि वो अजमाए। ये मुराद है, ये आखिरी जुमला लिख लें। कहते हैं ना, जो प्यार करे उसको डांटने का भी हक होता है, वही बात है। खैर, उसके रब ने आजमाया भी कली मातिन, चंद कलेमों के साथ। कली मातिन कलेमतुन की जमा है। काफ लाम मीम इसका रूट होता है, कलाम भी इससे। कलेमा का लफ्जी माना होता है किसी को जख्मी करना। है ये कैसे हो गया? ये जो आप और मैं कलमे बोलते हैं, ये भी तो कई लोगों के दिल काटते हैं ना, जख्मी कर देते हैं हम। तो कलाम क्या होता है? जब भी कोई बात की जाती है ना कलाम के नाते से, तो किसी न किसी तरह से वो दूसरे के ऊपर असर तो रखती है, ठीक है? असरअंदाज होने के मानों में लिखें। अब यहाँ अल्लाह सुबहाना तआला ने इब्राहिम की आजमाइशों का तذکرہ किया, और किस चीज़ से किया? मैं और आप तो कुछ और ही लंबी बात करेंगे, लेकिन अल्लाह ने यहाँ जो चार जुमलों में बोला, अभी कलीमात, अभी इसकी तीन तफसीरें लिखाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ लफ्ज़ कलीमात क्यों आया है। हम सीधा सा कह सकते थे भाई, इजी बतला इब्राहिम रब्बुहु फतम्महुन्ना। समझ रहे? उर्दू में आप देखें ना, जब रब ने इब्राहिम को आजमाया तो इब्राहिम पूरे हो गए। बट यह दो लफ्ज बड़े अहम है तफसीर के नाते से आज की। नंबर एक कलीमात, और नंबर दो अतम्मा हुन्ना। दोनों को भी हम तफसीर में देखते हैं, जरा शायद को मजीद समझ ले। जब रब ने उसको आजमाया, तो रब की उन आजमाइशों में वो पूरे के पूरे उतर गए। खैर, अतम्मा हुन्ना वही लफ्ज है जो तमाम, पूरा करना। अच्छा, पूरा करना की क्या बात होगी? इसका मतलब कि कोई चक्कर है, कलाम के साथ इसका ताल्लुक है। वरना आजमाइश में बंदा पूरा उतरता है, और तरह से ये भी हो सकता था, वैज़ इब्तला इब्राहिम और अब्बुहू फतम्मा होना, कामयाब हो गए। नहीं, तमाम करने की कोई बात है, दैट मीन्स फुलफिलमेंट। लिख ले बस, फातम्मा हुन्ना में फुलफिलमेंट। जब हुक्म आया, और पीछे आपने क्या आयत पढ़ी अल्लाह ताला के बारे में, व इज़ा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, पीछे बिल्कुल गुजरी है ना पिछले सबक के साथ। वहां से याद रखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हर हुक्म को इंस्टेंटली पकड़ लिया। जैसे कुन कहा अल्लाह ने तो चीज हो गई ना। बस आप बच्चे को कहते हैं बेटा पानी देना, तो एक बेटा उठता है और फटाफट जाके पानी ले आता है, फौरन लिया। फौरन का मानी है इसमें। अच्छा, दूसरा है वो कहता है अच्छा जरा माँ दूसरी बारी भी कह ही ले, शायद इसको ना ही प्यास लगी हो, भूल ही जाए। फिर तीसरी बार माँ कहती बेटा पानी, फिर उठता ढीला ढाला, उठता बैठता पता नहीं 15 मिनट में पानी का गिलास लाता है। तो पहले में और तीसरे में फर्क है ना। बस यहाँ ये कह लीजिए कि अरबी के लफ्ज आपको बता रहे हैं कि इब्राहिम ने उछल के रब को हुक्म मान लिया। इधर रब का कलाम सुना और बात पूरी हुई, और कलीमात के लफ्ज को जरा सा आप अपने इस कलाम पे भी ले लीजिए जो आप और मैं पढ़ रहे हैं। कुरान क्या है? कलामुल्ला। तो ये कलाम जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के साथ अल्लाह ने कुरान की सूरत में किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के हर हुक्म को कुरान समझा, हुक्म समझा। बात थोड़ी सी वाजे हुई है? आज तो हम कुरान में पढ़ के भी कहते हैं किधर लिखा है, ये मुझे तो नहीं कहा, ये तो माजी की बातें हैं, ये तो मनसूख हो जाए की हैं, ये यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं है। इब्राहिम की अकल ने कुछ भी, आपको कहना चाहिए कि इफ्स एंड बट्स नहीं किए, फौरन चल पड़े और कहा कि रब मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं। वो कहते हैं ना कि इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासिद जलील। जिन शख्सियात को अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया होता है ना, क्योंकि आरजुएं बड़ी छोटी होती हैं, اور ان کی زندگی کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی ہر بات کو سمے نہ بتانا کرتے ہیں۔ ایک اور جملہ لکھ لیں، بکلمات فتم ہننا کے نیچے، کہ سمے نہ واتانا، بس رب کا کلام سنا، اتوانا یعنی اتما ہننا۔ اب جس کو نہیں سمجھ آئے گی کوئی بات نہیں، بات وہی ہے۔ خیر، ابراہیم کا امتحان ہوا، اب امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ اس کو کرتے ہیں، ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ یہ قالا لکھیے، ڈکلریشن آف دی رزلٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، کیا؟ انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں تجھ کو۔ یہ لفظ کہاں بولا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہی لفظ ہے ادھر۔ یہ نہیں کہا، وہ ساری بحث یاد کر لیں جو کی تھی، اتا جلو اور یا جلون، یا جلو نہیں، آ جل نہیں، جاعلو اسم فائل ہے، میں کر دوں گا، مجھے زمانے کی کوئی قید کی ضرورت نہیں، یہ اسم فائل ہے، مطلب اس کو ورب کی صورت میں لانے کی بجائے اسم کی صورت میں لانا شدت کے لیے۔ خیر، میں بنانے والا ہوں، یعنی میں نے سوچ لیا کہ یہ میں کروں گا، کیا؟ لن ناسی اماما، انسانوں کے لیے امام۔ ابراہیم، آپ کے امتحان کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہ آپ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گئے، اور آپ کے پاس ہونے کے وجہ سے میں آپ کو اب ایک منصب دے رہا ہوں، کام مل رہا ہے، امامت کا کام مل رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی پاس ہو جاتا ہے تو پھر جاب ملتی ہے نا، ریزرمیٹ ایکسیپٹ ہو گئی، اب چلے امام ہو گیا۔ لفظ امام کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھیے گا، ام، ام کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو، ماں کو کہتے ہیں ام، کیونکہ ماں جڑ ہوتی ہے، بٹ اصل میں لفظ امام کہتے ہیں جس کی طرف قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، ماں کو ام کہتے ہیں نا، تو ہر بات میں بچے امی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چار دفعہ میسج آتے ہوں گے، اور چابی کدھر ہے، اور میں کیا کھاؤں، بھائی فریج کھول کے دیکھ لو، ماں نے کو تمہیں اجازت دے کے آنی تھی، ماما کچھ بھی، نتھنگ ٹو ایٹ۔ تو بچے کیا، بعض شوہر بھی ہر وقت بیگم کے پیچھے سوار ہوتے ہیں، یہاں بھی کئی عورتیں جو اٹھ کے بیچ میں کال سننے جاتی، مجھے سمجھ آ جاتا ہے ان کے میاں کو کوئی اجازت چاہیے، یا ان کو کوئی بریڈ نہیں مل رہی، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، گھر پہ خوب کنٹرول ہے۔ مائیں بڑی، بیویاں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرے پوچھے پورے ہاتھ نہیں لگاتے فریج کو۔ تو ماں کی طرف بھی ہر وقت گھر کا ہر بندہ ہی ہوتا ہے امی امی کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ماں کا۔ اچھا، امام کون ہے؟ لیڈر، جیسے نماز کے امام سوچئے، مسجد میں عید گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ساری صف کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں سمے اللہ لمن حمیدہ، تو ساری امت کھڑی ہو جاتی ہے، سارے مقتدی۔ تو امام وہ ہوتا ہے، حدیث میں بھی امام کی یہی تعریف ہے، کہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی پوری کی پوری اقتدا کی جائے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ حکم ہے نماز میں امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی ایکشن نماز میں نماز پڑھانے والے سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، فرمایا کہ امید ہے کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے امام تھے، تو وہ سر لپیٹ کے حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ شاگردوں نے اصرار کیا کھولو، تو جب کھولا تو اس کی شیپ ڈیفارم ہو چکی تھی، گدھے کی طرح کا سر تھا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، یہ کوئی ایسی فیبریکیٹڈ بات نہیں ہے، نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہمیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث پہ شک کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اتنی سی بات پہ کہ امام سے پہلے سارا آپ اٹھا رہے ہیں تو گدھے کا بنا دے، تو جب میں نے یہ شک کیا اللہ نے میرا یہ کر دیا۔ کیوں؟ عالم تھے، عالم کا شک عالم کا شک بن جاتا ہے، عام لوگوں کے بیچ دل میں 10 شک ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بہت خطرناک ہے، پیچھے والے سبق کی ساری باتیں یاد کر لیجئے کہ دین والوں کو ہر لحاظ سے موت کی طرح یقین ہونا چاہیے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے صحیح ہے اور اس میں غلط نہیں ہے۔ تو بہرحال امام لفظ ہم سمجھ گئے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، لوگ آپ سے تعلق جوڑ کر خوش ہوں گے، آپ لوگوں کے دلوں میں جئیں گے، یہ وہ۔ خیر، قال ومن ذریتی، یہاں سے ذرا نوٹ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے محبت۔ بھائی آپ دیکھیں نا کہ اب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کو ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، تو ابھی وہ بچہ ہے، کنوارا ہے، تو کہتا ہے اچھا کیا میرے بچے کو بھی ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے محبت دکھی، جو ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا کیا فوراً اولاد کا خیال آ گیا۔ इससे पता चलता है कि माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, पीछे तो जिक्र इशारतन था, आगे हम पढ़ेंगे सूरह कसस और सूरह तौहा वगैरह में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपने भाई के लिए, वजअली वजीरा मिन अहली, और यहाँ किसके लिए कर रहे हैं इब्राहिम? अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। आज के दौर में बाज़ दफ़ा माँ बाप अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा देते हैं, बाज़ बच्चे सारा सारा दिन अपनी माँ को तरसते रहते हैं और बच्चे डे केयर्स में रुलते रहते हैं और माएँ उन्हीं के लिए और कपड़े खरीदने के लिए जॉबें कर रही होती हैं। तो याद रखिएगा कि दिल की सख्ती है बाज़ दफ़ा जब सिर्फ ख्वाहिशात के नाम पर अपने बच्चों को हम पीछे कर दें, लेकिन हकीकी लीडर वही होता है जो अपने बच्चों की फिक्र होती है। क्या कहा है अल्लाह मेरी औलाद को भी? अब देखिए क्या कहा है, वकाला मिन जुर्रियती, क्या मिन जुर्रियती? अगर आप इस आयत का टेक्स्ट ना समझे तो ये एक अधूरा जुमला है। वा और मिन से जुर्रियती मेरी औलाद, क्या मेरी औलाद से? तो फिर आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क है। व मिन जुर्रियती, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, काला व मिन जुर्रियती, क्या अल्लाह मेरी औलाद को भी मिलेगा? अब दोनों में फर्क है ना, सवाल पूछ रहे हैं क्या मिलेगा मेरी औलाद को भी। आप इसमें से बता सकते हैं पिछले हिस्से से देखकर? इमामत, शाबाश। क्या मेरी औलाद को भी आप इमामत का मनसब देंगे? काला, फरमाया, किसने फरमाया? ला ये नालू, नहीं पहुंचने वाला। ये नाल का लफ्ज कभी आपने सुना उर्दू में? नाला या नीलू नईलन, आप में से कोई आपकी दोस्तों में नाइला है? वही लफ्ज है, पा लेने वाला। नाइला कहते हैं अचीवर, पाने वाली, पा लेना, समझ गए ना, टू गेट समथिंग, गेटर। तो ला ये नालू नहीं पाएगा, अहदी मेरा अहद, अज़ालिमीन जालिमों को, यानी मेरा ये वादा या अहद या ये जो मेरी तरफ से एक थिलबुत मिल रही है या एक पेशकश है या ऑफर है, इससे फायदा जालिम नहीं पाएंगे। ये आयत तो एक लाइन की है लेकिन इस पर शायद हमारे 15 मिनट लग जाएंगे जो आई होप, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तذکرہ हो रहा है। आप थोड़ा सा पिछली आयतों को घूम के देखें ना, तो अल्लाह ताला ने पीछे मुसलमानों को एक बात बता दी थी कि लन तरदान कल यहूद वलन नसारा, याद है? यहूद और नसारा आपसे कभी खुश नहीं होंगे, उनको खुश करने का एक ही तरीका है, हत्ता तत्तबिय मिल्लतहुम, आप उनके तौर तरीकों को अपना लीजिए। हम मुसलमानों ने ये सोचा कि जब हम अहले किताब के तौर तरीकों को अपना लेंगे ना तो हम कामयाब हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने हमारी खुशफहमियाँ दूर कर दी कि कुल इन्ना हुदल्लाही हुवल खुदा। नहीं, गाइडेंस तो अल्लाह की तरफ से उसी को मिलेगी जिसने पानी है। यानी वहाँ जो बात छेड़ी गई थी ना, आज हम मुसलमानों को एक अमली रोल मॉडल दिखाया जा रहा है। तुम चाहते हो कि तुम पैरवी करो किसकी, करनी है तो यहूद नसारा की नहीं, बल्कि यहूदो नसारा जिसको अपना लीडर कहते हैं उसकी करो। यहाँ जोड़ लीजिए बात को कि तुम्हें मेन कॉज स्ट्रीम लाइन से जोड़ा जा रहा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीकों को तुम अपना लोगे तो सारा कुछ बीच में ठीक हो जाएगा। अल्लज़ीना आतैनाहुल किताब यतलूनहू हक्क तिलावती की आयत गुजरी थी जिससे ये बता दिया गया था कि किस तरीके से ये बात है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, क्योंकि ये वाकई पहली दफ़ा है। अभी तक हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है ना, इब्राहिम के बाद की पढ़ी है। अमूमन क्या हम शुरू करते हैं, इब्राहिम के दो बेटे थे इस्माइल और इसहाक, और इसहाक के आगे फिर 12 बेटे थे और याकूब के थे, और याद है ना, इस तरह की बात है। अब हम थोड़ा सा नोट करेंगे कि हज़रत इब्राहिम कौन थे, क्योंकि द फेमस्ट पर्सन है, मोस्ट फेमस पर्सन है, कुरान में इनका तस्करा बहुत जगह। और साथ दूसरा सवाल यह कि इब्राहिम की आजमाइश किस चीज़ की थी, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो इमामत के लिए चुना गया, ये यहाँ किस चीज़ की बात समझ में आती है? तो पहली बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं ये तारीख की बड़ी मशहूर शख्सियत है। यहाँ पहली दफ़ा इनका तذکرہ आ रहा है। मक्का वाले मुशरिकीन भी इनको जानते थे, और मदीना वाले यहूद भी, और नजरान वाले नसारा भी, यानी ये नबी सल्लम के दौर के तीन मशहूर मजहब जो थे ये सब जानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको तौरात में अब्राम कहा जाता है, अब्रम, अब्राहम भी कहते हैं और अब्रम भी कहते हैं कि इनके और हज़रत नूह के दरमियान 10 जनरेशन थी, 10 पुश्तों का फ़र्क था। गोया कि आप कह सकते हैं कि हज़रत नूह की 11वीं पुश्त में से थे, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। इनकी उम्र कहते हैं कि 175 साल है, तौरात में भी इनका तذکرہ मौजूद है। और अगर आप देखें तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1985 यानी 1985 कबल मसीह में फौत हुए थे, यानी आप टाइम की ड्यूरेशन को देखें। इनके बाप का नाम तारिख था, जिसको कुरान में आज़र कहा गया है। कदीम ज़ुबानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। बाबुल शहर के रहने वाले थे और बाबुल जदीद जुग्राफिया में इराक को कहते हैं, इराक जो आज के दौर में, वहाँ आपकी विलादत हुई। उर कहते हैं तौरात में उसको, यानी उस दौर में उस शहर को उर कहते थे। कहते हैं कि एक ख़ास अरसा तक ये शहर नक्शे से गायब रहा, बिल्कुल गुम गया, फिर खुदाई हुई, जैसे ज़मीनें खोदी जाती हैं ना, तो 1894 में ईस्वी में ये शहर दोबारा डिस्कवर हुआ। और 1922 में, यानी आज से लगा लीजिए कोई पीछे चले जाएं तो 100 साल पीछे, 100 कुछ साल कम, बल्कि समझिए कि 90 साल पीछे चले जाएं, तो बरतानिया और अमेरिका के माहरीन असरियात की एक मुश्तरका तहकीकी टीम ने इराक की तरफ कुछ लोगों को भेजा और खुदाई का काम किया। 7 साल तक वहाँ खुदाई करते रहे और उसमें से ये पूरा शहर निकला। यानी आज ये शहर जो निकला हुआ है, इसको तकरीबन 90 इयर्स मौजूद हो गए हैं। और कहते हैं कि इराक की हुकूमत ने फिर उसको आसारे कदीमा या खंडरात के तहत एक किस्म का अजायब खाना बना दिया या म्यूजियम बना के वहाँ बहुत सारी चीज़ों को सेव किया हुआ है। बहरहाल ये सारी इसकी हिस्ट्री थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में दुनिया में भेजे गए, वो दौर अंधेरों का दौर था। इंसान की तबीयत के अंदर भी जो अल्लाह ताला की मार्फत है ना फितरत में, लोगों की वो भी मस्ख हो चुकी थी। और अल्लाह सुबहाना ताला ने इस बच्चे को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया। ये जो बात कर दी कि इज़्ज़िबतला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमात फ़तम्महुन्ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश अल्लाह ताला ने की थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें पूरे के पूरे उतरे। सवाल पैदा होता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या आजमाइश थी और किस चीज़ में पूरे हुए। बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन अगर हकीकत में इसको आप समझना चाहते हैं तो थोड़ी सी डिटेल चाहिए। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है। सूरत मुल्क आयत 2 में आता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी हर इंसान को पैदा ही इम्तिहान के लिए किया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो गॉड किधर है, और कोई हैंडीकैप पैदा हो गया तो क्यों हुआ। तो आप जवाब दीजिए कि हम सब यहाँ एक एग्जामिनेशन हॉल में। सूरह दहर आयत 2 में भी आता है, इन्ना खलकनल इंसान न मिन नुतफते न मशाजिन नबतलीही। हम इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा करते हैं ताकि उसको आजमाएं। इम्तिहान लेने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं अल्लाह ताला के हम सब के। अक्ल का इम्तिहान, यानी सोच फिक्र नज़र का, कि सबसे ज़्यादा एक बंदे को कौन प्यारा है। यानी पहला इम्तिहान इस बात का कि बंदा अल्लाह से प्यार करता है या दुनिया की चीज़ों से, ठीक है। दूसरा हमारा इम्तिहान जो है ना, वो अमल का है। गौर से सुनिए, ये बहुत अहम बातें आप एंड पे जमा हो जाएंगी आपके पास। हर इंसान के दुनिया में दो इम्तिहान हो रहे हैं, अकल और फिक्र का, यानी कि सही खुदा को मान रहा है या असलीब को खुदा बना रहा है, या ईसा को गॉड कह रहा है या किसी गाय को गॉड कह रहा है। सारी इंसानियत, आदम से लेके डे आखिर तक आने वाले इंसानों में, हर इंसान का सबसे बड़ा ये इम्तिहान है कि वो अपनी अकल के मुताबिक सही खुदा का फैसला करता है, सही अपना लीडर चुनता है। ये मुराद है। जब हम कहते हैं मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इम्तिहान में कामयाब। सारे वो लोग आज तक दुनिया में आए हुए जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत समझ ली, वो इस इम्तिहान में कामयाब है। सबसे ज्यादा फेल कौन है इस इम्तिहान में? एथियस्ट, दहरिया, जिस मुल्क में आप रहते हैं इसका लीगल रिलीजन कहते हैं आप एथियज्म है, बाकी बातें तो दूर की है। ला दीनियत, ला खुदाइयत, आई डोंट बिलीव इन एनी गॉड, ठीक है। तो वो फेल है, चाहे वो गोरे हैं, वो चिट्टे हैं, वो दुनिया की तरक्कियों पे हैं। और जैसा कि मैंने आपको दो चार दिन पहले स्टीवन हॉकिंग का नाम सुनाया था, दुनिया का बिलियनेरियन शख्स है, ट्रिलियनेरियन शख्स है, हैंडीकैप है, लेकिन वो गॉड को नहीं मानता। इतना तोड़ा रब ने उसको, फिर भी नहीं उसको समझे, हालांकि पहले वो ठीक था। तो ये इम्तिहान पहले आप और मैं अपना चेक करें तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल की गहराई से आपके दिल से निकलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। اس میں سب مسلمان کامیاب ہیں ماشاء اللہ، لیکن جو دوسرا امتحان ہے نا وہ عمل کا امتحان ہے، اس میں بڑے فیل ہو جاتے ہیں. عمل کے امتحان میں کیا اللہ مجھ سے آپ سے پوچھتا ہے؟ مال اور جان کس کی خاطر لگائے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین میں بھی یہ بات آپ پڑھیں گے، سورۃ توبہ کی آیات ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لی ان کی جانیں اور مال. امتحان میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کا ذریعہ قربانی ہے. میں اور آپ اللہ کے راستے میں کیا چیز قربان کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں اور کتنی نہیں کرتے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا آخرت کا امتحان. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یعنی یہ زمانہ اگر دیکھا جائے تو انسان حشر میں کھڑا ہوا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے. کوئی ہے اللہ کے لیے نیکی تو رکھ لو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے سے، یعنی میرے سے اپنا نام لکھیں، ہر چیز کی محبت اللہ کی محبت پہ قربان کر دوں. سورۃ بقرہ آیت 165 میں آپ یہ پڑھیں گے بات ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہی، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جَبْكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اگر آج یہ باتیں میں سمجھا سکی نا تو یقین کریں آپ کو نماز پڑھنے کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی اور باقی چھوٹے موٹے سوال جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں نا وہ بھی نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ مجھ سے آپ سے ویری سمپل، کہ اس کے راستے میں آنے والی ہر محبت کو قربان کر دیں. یہی بات سورۃ توبہ 24 میں ہم پڑھیں گے، 9 محبتوں کا بات ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. تمہارے بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے، وہ تجارت جس کے خسارہ ہونے کا تم کو ڈر ہوتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، سب کر کے کہا حب الیکم من اللہ و رسولی. اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، ہم کہیں گے نہیں ان دو سے تو میں نہیں پیارے. اچھا تیسری بھی چیز ہے، وہ جہاد ان فی سبیلی، اس کے راستے کی محنتوں سے بھی، اس کے راستے کے دین کے کاموں سے، تقاضوں سے بھی پیارے. تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. تو بنیادی اصول سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ دو چیزیں چاہتا ہے، کہ جان اور مال ہم کس کی خاطر لگاتے ہیں. سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے. سورۃ بقرہ میں آیت 207 میں ہم پڑھیں گے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ٹھیک ہے. یہ سب سمجھ آ گئی. اب ہم بات کرتے ہیں ابراہیم کی آزمائشوں کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، امتحان اور آزمائش کی کامل ترین مثال ابراہیم علیہ السلام ہے. کیسے؟ اللہ نے ان کے کون سے امتحان لیے؟ میں نے اور آپ نے پہلا امتحان کون سا پڑھا بھی؟ عقل کا امتحان، فکر اور نظر کا امتحان، موروثی عقائد کی قربانی کا امتحان. ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تھے نا، اس وقت لوگ ستاروں کو پوچھتے تھے. تو لکھیے نمبر ایک، پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا ستارہ پرستی کے شرک کی نفی کرنی ہے، اور اس کا تذکرہ آپ اور میں پڑھیں گے سورۃ الانعام آیت 76 سے 79. پیچھے پوری قوم کا تذکرہ اور آخر میں کہا جا رہا ہے ابراہیم کے ذریعے سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم سب سے پہلے اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ستاروں کو نہیں پوجا. دوسرا امتحان تھا مذہبی شرک کی نفی، مذہب کے نام پہ لوگ شرک کر رہے تھے. سورۃ الانبیاء آیت 52 سے 67 میں اس کو آپ پڑھیں گے. یہ نمبر نوٹ کریں، ویکینڈ پہ جا کے انجوائے کریں ان آیتوں کے ترجمے، اور کو پڑھیے کسی تفسیر میں سے، تفسیر بھی بے شک پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ابراہیم کے ذریعے سے یہ بات کہلوا دی، قال افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ مالا ينفعكم شيئا، جو تمہیں ذرا بھی نفع نہیں دیتے، ولا يضركم ضرر بھی نہیں دیتے، اف لکم، تمہارے لیے اف ہے، ولما تعبدون من دون اللہ. تو دوسری کامیابی ابراہیم کو ہوئی مذہب کے نام پہ، جو شرک ہو رہا تھا اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا. تیسرا ان کا امتحان تھا سیاسی شرک کا امتحان. جس دور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمرود کا دور تھا. نمرود خود کو خدا کہلاتا تھا، کہتا تھا مجھے رب کو. ابراہیم نے اس کی نفی کیسے کی؟ الم تر الی الذی حاج इब्राहिम अफी रब्बी ही, थोड़े ही अरसे में आ जाएगा इसलिए ये तो आपको याद होगा। तो वहां इब्राहिम ने उसको ऐसे ऐसे दलाइल दिखाए कि वह फबुहित अल्लजी कफर, हैरान हो गया वो शख्स। तो गोया कि आप लिखिए कि सियासी शिरक में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुए, इन्होंने सियासत के नाम पर भी शिरक नहीं किया। चलिए दूसरा इम्तिहान क्या होता है, ये तो हो गए खुदा को मान गए, पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह नाम में कि इन्होंने सितारे को देखा, चांद को देखा, का ये रब हाजा रबी हाजा रबी हाजा अकबर, कहने का मतलब है कि रब को पाने में इब्राहिम कामयाब हो गए, ये पहली किस्म में कामयाब।